نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. سورة هود کی آیت نمبر 15 اور 16. جو شخص دنیا کی زندگی اور اس کی زینت چاہتا ہو تو ایسوں کو ہم ان کے اعمال کا پورا پورا بدلہ یہیں دے دیتے ہیں اور ان کو کوئی کمی نہیں کی جاتی. ہاں یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے آخرت میں پھر سوائے آگ کے اور کچھ نہیں ہے, اور جو کچھ انہوں نے یہاں کیا ہوگا وہاں سب عکارت ہوگا, ضائع ہوگا, اور جو کچھ ان کے اعمال تھے سب برباد ہونے والے ہیں.
آج شروع کرنے سے پہلے میں تھوڑا آپ لوگوں سے سوال کرنا چاہتی ہوں, کیا ہم سب کا یہ ایمان ہے کہ ہمیں اللہ کے پاس جانا ہے اور اس کے حضور پیش ہونا ہے؟ پھر دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ کیا میری اس کے لیے تیاری ہے؟ زندگی کیسی گزر رہی ہے, شب و روز کیسے گزر رہے ہیں, دن اور رات کیسے گزر رہے ہیں, کیا ایسی تیاری ہے کہ میں اگر اپنے رب کے حضور پیش ہو جاؤں تو میں واقعی کچھ کہنے کے قابل ہوں, کچھ جواب دینے کے قابل ہوں اس زندگی کے بارے میں جو میں نے گزاری ہے؟ کیا میں مطمئن ہوں اس چیز سے کہ جو زندگی میری گزر رہی ہے اس قابل ہے کہ میں اس کو پیش کر سکوں اپنے رب کے حضور؟ اگر مطمئن نہیں ہے تو اس کا مطلب ابھی گنجائش ہے اصلاح کی, اور ابھی گنجائش ہے کہ اور بہتر عمل کیا جائے. تو پھر ہم کیا زندگی میں کوئی وقت آنے کا, کسی اور لائف کا یا کسی چیز کا انتظار کر رہے ہیں کہ اس کے بعد ہم اپنی تیاری شروع کریں گے؟ کیا ہم کوئی انتظار کر رہے ہیں, کوئی ویٹ ہے کسی چیز کا کہ یہ کام ہو جائے تو پھر یہ کروں گی؟ نہیں نا, کیونکہ ہم سب یہ بات جانتے ہیں کہ موت کے فرشتے نے کسی کا ویٹ نہیں کرنا, رائٹ؟ وہ تو جب آئے گا تو وہ اس نے کہنا کہ چلو اب, چاہے آپ کی تیاری ہے یا نہیں. اور تیاری سب کی اس دنیا میں نظر آنے لگتی ہے کہ کون ہے جو اللہ تعالیٰ کے ہاں جانے کے لیے دن اور رات تیاری کرنے میں مصروف ہے, اور کون ہے جو اپنے وقت کو ضائع کر رہا ہے اور دنیا میں گم ہے. یاد رکھیے گا, آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے جانے سے پہلے یہ فرما کے گئے ہیں کہ میرے بعد دنیا کے بندے نہ بن جانا, میرے بعد دنیا کے بندے نہ بن جانا. یہ نہ ہو کہ تم دنیا میں گم ہو جاؤ میرے بعد, یہ نہ ہو کہ دنیا تمہیں اپنے اندر ایسا کھینچ لے, ایسے تم اس کے اندر مست ہو جاؤ کہ تمہیں یہ یاد نہ رہے کہ تمہیں لوٹنا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا گری پڑی چیز ہے, اس سے اچھے بھی کھاتے ہیں اور برے بھی کھاتے ہیں, اور آخرت حقیقت ہے, دنیا پیٹھ پھیر کے چل چکی ہے. کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اور قیامت ایسے ہیں, دو انگلیاں جوڑ کے بتائیں کہ میں اور قیامت ایسے ہیں, میرے بعد یعنی اب قیامت ہی آئے گی, اب میرے بعد کوئی اور نبی نہیں آنا, اتنی قریب ہے قیامت. اور یہ امت جو آئی ہے اس دنیا میں, تو جانتے ہیں اس امت کا ٹائم کیا ہے آنے کا دنیا میں؟ کہ دنیا کی پورا جب سے دنیا بنی ہے اس پورے ٹائم کو اگر لے لیا جائے ایک دن کی طرح, اب ہم ملینز اور ٹریلین ایئر میں نہیں جاتے, ہم یہ دیکھتے ہیں جیسے ایک دن ہے. تو ہم یہ امت یعنی ہم لوگ اس وقت آئے ہیں جب دن ڈھلنے والا ہے, شام ہو گئی ہے نا. پچھلی امتیں کب آئی تھی؟ جب صبح تھی, کوئی دوپہر میں آئی, کوئی آدھا دن گزر چکا تھا, بھائی. لیکن یہ امت کب آ رہی ہے؟ جس وقت بالکل سورج غروب ہونے والا ہے, سورج نظر آ رہا ہے کہ اب جا رہا ہے, یہ امت اس وقت آئی. یعنی اس کے بعد کیا ہے؟ दिन ढल जाएगा, इस दुनिया की जिंदगी खत्म होने वाली है। मुझे और आपको अपनी जिंदगी खत्म होने का तो शायद पता नहीं यकीन है या नहीं है, मगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दुनिया की जिंदगी खत्म होने वाली है, यानी ये दुनिया मिट जाने वाली, अब इसका एंड होने वाला है, क्योंकि अब इसके बाद कोई उम्मत नहीं, कोई नबी नहीं, कोई और आने वाला नहीं, अब खातमुन नबीयीन आ चुके हैं। तो अब क्या है अगला मरहला, क्या है? पिछले कौमों को तो ये होता था ना, अब और कोई नबी आ गया, अब हमारे बाद क्या मरहला है? सिर्फ कयामत का ही। अगर जितने लोग यहां पे बैठे हैं, अगर इनकी किस्मत में जिंदगी लिखी हुई है और अगले 50-60 साल की जिंदगी लिखी हुई है, जितने लोग यहां पे बैठे हैं, अगर सबके नसीब में लिखी हुई है, तो यकीन करें इन सब के एक दिन ऐसा आने वाला है कि इन सब के चेहरे झुर्रियों से भरने वाले, इन सब की आंखों पे चश्मे लगने वाले, इन सब के कानों पे आले लगने वाले, इन सब की कमरें झुकने वाली और घुटने जवाब देने वाले, सबका यह हाल होने वाला अगर जिंदगी लिखी हुई है। और अगर नहीं लिखी हुई तो फिर तो बिल्कुल वैसे ही अल्लाह के पास जाना ही होगा। लेकिन ये अंजाम है कि ये बाल सफेद हो जाने, और जो कुव्वतें हैं जो अभी आपके पास है ये जाने वाली है, जितनी आज है ना इससे कम ही होने वाली। क्या आप महसूस करते हैं कि दिन ब दिन कम हो रही है बढ़ रही है? कम हो रही है। तो दिन ब दिन जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती जाएगी, जैसे जैसे आप आगे जाते जाएंगे, क्या अमल करने के लिए कुव्वत ज्यादा मिल रही है आपको या कम मिल रही है? तो हम उस वक्त का इंतजार कर रहे हैं जब हमारी कुव्वत क्या हो जाए, स्लो डाउन हो जाए और बिल्कुल कम हो जाए। अगर जिंदगी लिखी भी होगी तो ऐसे जा रहे हैं हम डाउन द हिल, राइट? हम ऐसे जा रहे हैं कि हमारा अमल जो है वो उसकी हमारे पास जो स्ट्रेंथ जितनी होनी आज जितनी है और जितनी होनी चाहिए, जितनी जरूरत है, उससे कम से कम होती चली जा रही। लेकिन हम ऐसे ही वक्त का वेट कर रहे हैं क्या बैठे, जिसमें हमारी कुव्वतें जवाब दे जाए, जिसमें हमारा जहन काम करना बंद कर दे, जिसमें हमारे पास ना देखने की उस तरह से कुव्वत रहे, ना सुनने की वैसे कुव्वत रहे, ना चलने फिरने की रहे। क्या हम इस दिन का इंतजार कर रहे हैं कि हम तब जाके तैयारी करेंगे? क्योंकि देखें अगर किसी ने ना तैयारी की क्या होगा, क्या फर्क पड़ेगा? अगर हम बगैर तैयारी किए हुए ऐसे ही चले जाएं क्या फर्क पड़ता है? आज हम देख रहे हैं सभी एक जैसा ही तो जिंदगी गुजार रहे हैं, वो काफिर लोग भी बड़े मजे कर रहे हैं तो हम लोग भी मजे कर लें, क्या फर्क पड़ेगा? फर्क ये पड़ेगा कि जिसने यहां पे तैयारी ना की और जिसने यहां की जिंदगी को इसी दुनिया में गुम होके वक्त गुजार दिया, तो अल्लाह ताला ने सूरह नाजियात में फरमाया फइज़ा जाअत तौमतुल कुबरा, जब वो बड़े हंगामे का दिन आएगा ना, यौमा यतज़क्करुल इंसानु मा सअ, उस दिन इंसान सोचेगा जो उसने कोशिशें की दुनिया में, जो अमल किए उसके बारे में सोचेगा। वबुर्रिज़तिल जहीमु लिमन यरा, और जहन्नम को खींच के ले आया जाएगा सबके सामने, हशर के मैदान का नक्शा अल्लाह ताला ने सूरह नाजियात में खींचा है कि उस दिन इंसान खड़ा होगा और देख रहा होगा, क्या अपने सामने देख रहा है कि जहन्नम को खींच के लाया जा रहा है? अब इंसान को याद आएगा, जिसको हम पंजाबी में कहते हैं ना, इंसान चेतेगा, याद करेगा कभी कि मैंने क्या किया, मैंने क्या कोशिशें की, मैंने क्या अमल किया। आज तो चलो हम अपनी नई हिस्ट्री देखते हैं, अपना हिसाब नहीं लेते, उस दिन जरूर इंसान सोचेगा मैं क्या करती रही। अल्लाह ताला ने फरमाया फअम्मा मन तगा, तो जो सरकशी जिसने की होगी, वह आथरल हयात दुनिया, और इस दुनिया की जिंदगी को तरजीह दी होगी, उसके लिए नंबर वन क्या थी? दुनिया। आखरत क्या थी? नंबर टू पे थी, दुनिया उसकी प्रायोरिटी थी। बल तो उसे रून अल हयात दुनिया, तुम क्या करते हो, बल्कि तुम तो दुनिया को ही तरजीह देते हो, तुम्हारे लिए दुनिया नंबर वन है, दुनिया का नुकसान ना हो जाए, दुनिया की नाकामी ना हो जाए, दुनिया में कोई परेशानी ना हो जाए, दुनिया में कोई फिक्र ना हो जाए, इस चीज के लिए ज्यादा ध्यान है हमारा और इस पर तवज्जो ज्यादा है। अल्लाह ताला ने फरमाया जिसने दुनिया की जिंदगी को आगे रखा है ना, फइन्नल जहीमा हियल मावा, तो जहन्नम उसका ठिकाना। क्योंकि जो अपनी दुनिया के लिए परेशान रहा और जिसने दुनिया को आगे रखा, वो अपनी आखिरत का जरूर नुकसान करेगा। अब जिसने अपनी आखिरत को आगे रखा उसकी दुनिया का लाजमी नुकसान होगा, कुछ ना कुछ तो गिव अप करना पड़ेगा ना। देखें दुनिया का कुछ टाइम देना पड़ेगा, कुछ एफर्ट करनी पड़ेगी, कुछ मेहनत होगी, तो जाहिर है कुछ दुनिया में कमी करनी पड़ेगी, तो तब आखिरत के लिए कुछ बनाओगे ना। तो जिसने اپنی دنیا میں کمی کی اس نے اپنی آخرت بنا لی, اور جس نے دنیا میں نقصان اٹھایا اس نے آخرت بنائی. جو دنیا ہی کے فائدے چاہتا ہے کہ 100% میری دنیا صحیح رہے, نہ میرے گھر کا کوئی کام پیچھے رہے, نہ میرے کام کاروبار میں کچھ کمی آئے, نہ میری کوئی اور ایکٹیویٹیز میں کوئی کمی آئے, اور میری آخرت بھی بن جائے, وہ بے وقوف ہے. ایسے نہیں بنتی. یہاں کا نقصان کرو گے تو آخرت بنے گی. یہاں پہ تم چاہتے ہو کہ پورا پورا ملے تو آخرت نہیں بن سکتی. تو جو انسان یہ سمجھ گیا کہ دیکھو دنیا کی جو ناکامی ہے یہ اصل ناکامی نہیں ہے, یا دنیا کا نقصان اصل نقصان نہیں ہے, اصل نقصان یہ ہے کہ انسان آخرت میں ناکام ہو جائے. دنیا میں ناکامی کیا ہے؟ زیادہ سادہ آپ چار پیسے کم کما لیں گے, زیادہ سادہ تھوڑی دیر کے لیے آپ کو گھر کی صفائی پہ کوئی تھوڑی کمی کرنی پڑ جائے گی, شاپنگ میں تھوڑی کمی کرنی پڑ جائے گی, جاب چھوڑنی پڑ جائے گی, اس کے آورز کم کرنے پڑ جائیں گے. زیادہ سادہ یہی نقصان ہو جائے گا کہ کام تھوڑا دنیا کو کرنا پڑے گا, یا کریئر میں پیچھے رہ جائے گا. ہم کہتے ہیں وہ اس نے اتنا بنا لیا میں پیچھے رہ گئے, کچھ اپنے کیریئر میں کمی کرنی پڑ گئی, کچھ اور دنیا کا کچھ تھوڑا سی کمی کرنی پڑ گئی. یہ ہم دنیا کی ناکامی سمجھتے ہیں. یہ ہے دنیا کی چلو ناکامی ہمارے, یا اس کے علاوہ بھی کوئی ہے؟ اگر میری شاید میری سمجھ سے باہر کوئی اور چیز ہو آپ بتائیں, کوئی اور چیز کو سمجھتے ہیں آپ کی دنیا کی ناکامی اور کیا ہے ہمارے پرسپیکٹو سے؟ یہی ہے نا. شاید میں نے کوئی چیز مس کر دی ہو جو آپ ایڈ کرنا چاہیں. اسی کو ہم دنیا کی ناکامی سمجھتے ہیں, پیسے کم ہو گئے, جاب چلی گئی, کسی کا کاروبار کم ہو گیا. لیکن آخرت کی ناکامی پتہ ہے کیا ہے؟ آخرت کی ناکامی یہ نہیں کہ وہاں پہ کوئی جھونپڑی آپ کو مل جائے گی, یا چلو اچھا محل نہیں ملا تو چلو ایک اپارٹمنٹ میں رہ لوں گی, چلو اگر بہت نہیں کما رہے تو بس چلو روکھی سوکھی کھانے کو مل جائے گی. نہیں, آخرت کی ناکامی کیا ہے؟ آخرت کی ناکامی وہ آگ ہے جس سے یہ دنیا کی آگ بھی پناہ مانگتی ہے. آخرت کی ناکامی وہ ہے. دنیا میں ایک داڑھ کا درد ہو جائے تو انسان ساری رات تڑپتا رہتا ہے, کوئی کام کرنا اچھا نہیں لگتا. کسی کو بھی دانت کا درد ہوا ہو تو وہ بتا سکتا ہے کہ کیسا ہوتا ہے. انسان کہتا ہے ہر چیز کو پیچھے پھینکو, میرے دانت میں درد ہے اس وقت, مجھے نہ کوئی بلائے. یہ چھوٹی سی دنیا کی تکلیف ہے. آخرت کی تکلیف اس کے مقابلے میں کیسی ہے کہ یہ داڑھ 10 میل لمبی ہوگی, اور اس کے اندر اگر درد پڑ گیا تو وہ کون سی ٹائلنول ہے یا کون سا ڈینٹسٹ ہے جو اس کی صفائی کرے گا اور اس کو صحیح کرے گا؟ آخرت کی ناکامی کا تو انسان تصور ہی نہیں کر سکتا. اس کو کہہ دے آؤٹ آف کوسچن. آخرت میں ناکامی جو ہے از نو آپشن, نو آپشن. ہم دنیا میں چھوٹا سا اپنے لیے فیلئر کا لفظ نہیں چاہتے کہ میرے نام کے ساتھ فیل کا لفظ آئے کہ یہ فیل ہو گئی. آخرت میں جو فیلئر ہے نا وہ آگ ہے کہ جو ہزار سال بھڑکائی گئی, ہزاروں سال بھڑکائی گئی تو وہ آگ سفید ہو گئی, ہزاروں سال بھڑکائی گئی تو وہ آگ سیاہ ہو گئی. آج وہ آگ کالی سیاہ ہے, اور وہ آگ ہے جس کو بجھنا نہیں, جس کا ایندھن کون ہے؟ انسان اور پتھر. یہ اس کا ایندھن ہے کہ وہ اس سے اور ایندھن ڈالے تو بھڑکتی ہے نا. اور یہ وہ آگ ہے. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن پاک میں ایک بہت سخت آیا ان لوگوں کے لیے جو آگ میں ہوں گے, فذوقوا فلن نزیدکم الا عذابا, چکھو اس کو اور اب تمہارے لیے سوائے عذاب میں بڑھاوے کے اور کوئی چیز نہیں بڑھے گی. عذاب اور بڑھتا جائے گا, یہ نہیں ہوگا کہ اتنا ہی رہے گا جتنا پہلے دن تھا, ہر دن بڑھتا چلا جائے گا. تو دنیا کی ناکامی دیکھو اور آخرت کی ناکامی دیکھو, نو کمپیریزن. وہ کمپیریزن بھی نہیں ہے کوئی کہ ہم کہیں کہ اچھا یہ ایسے فیلئر وہاں پہ بھی ایسا فیلئر ہوگا. نہیں, اس کا تو آپ تصور ہی نہیں کر سکتے. جیسے جنت کی نعمتوں کا تصور نہیں کیا جا سکتا نا, اسی طرح جہنم کے عذابوں کا بھی انسان تصور نہیں کر سکتا کہ وہ کیا ہوں گے. ان کے بارے میں سن کے انسان کا دل دہل جاتا ہے. آج آپ کے سامنے کسی کوئی دکھائی جائے, وہ اتنی دفعہ دکھاتے ہیں خبروں کے اندر کہ ایسے جو کمزور لوگ ہیں وہ یہ نہ دیکھیں, جو بچے ہیں وہ یہ نہ دیکھیں, کیونکہ ہم ابھی ایسے کچھ مناظر دکھانے والے ہیں کہ ہر کوئی اس کو دیکھ نہیں سکتا. اس عمر سے کم کے لوگ نہ دیکھیں. ہوتا ہے نا کمزور دل حضرات نہ دیکھیں, کیا ہوتا ہے اس کے اندر؟ کوئی ایسے گرافک سینز ہوتے ہیں جو انسان برداشت نہیں کر سکتا, کسی کے جلنے کا, کسی کے کٹ مرنے کا, کوئی خون کا. ये हम देख भी नहीं सकते, अभी सिर्फ हमारे सामने नहीं हो रहा, सिर्फ स्क्रीन पे हम देख नहीं पाते, कि हमसे बर्दाश्त नहीं हो पाता। और कोई खबर हम सुन लेना तो हम कहते हैं कि हम सो नहीं पाए क्योंकि फलां खबर मैंने सुन ली थी। ये हमारे दिल की हालत हो जाती है। तो एक वो मंजर देखें कि जहां पे आग ही आग, और मैं उसकी बहुत ज्यादा तफसील में नहीं जाना चाहती, मैं सिर्फ आप सबको ये मालूम है, सोचें कि आज किसी चीजों का, ऐसी चीजों का हम तसव्वुर नहीं कर सकते और उनको देख नहीं सकते, उनके बारे में सुन नहीं सकते, हम इतने घबरा जाते। हालांकि ये दुनिया की छोटी सी तकलीफ है, ये छोटी है, ये छोटी है, बिलीव नहीं, ये छोटी है। तो आखरत की तकलीफ हम कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं? और हम मुतमईन बैठे हैं कि हम कुछ नहीं भी करेंगे तो वहां पे सब कुछ हमें मिल जाएगा। हम ये सोचते हैं कि हम कलमा हम पढ़ लिया, हमने ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लिया तो हम जन्नती हैं। तो ला इलाहा इल्लल्लाह तो अब्दुल्लाह बिन उबई ने भी पढ़ा था, अब्दुल्लाह बिन उबई भी वो तो कलमा पढ़ चुका था या नहीं बताएं? रईसुल मुनाफिकीन कलमा पढ़ चुका था वो। नमाज़े मुनाफिकीन पढ़ते थे या नहीं? पढ़ते थे, लेकिन शऊरी मुसलमान नहीं थे, इस्लाम उनके दिलों में दाखिल नहीं हुआ था। जैसे आज हम बस बॉर्न मुस्लिम हैं, अगर मेरा नाम आयशा है या मेरा नाम फातिमा है या मेरा नाम खतीजा है तो मैं ये समझती हूँ कि बस ठीक है, मैं सेफ हूं। नहीं, हम सेफ नहीं। अगर हम सेफ होते तो अल्लाह ताला फरमाते हैं या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, इत्तक़ुल्लाह, डरो अल्लाह से, फल तंज़ुर नफ्स मा क़द्दमत लिग़द, हर नफ्स को चाहिए को वो देखे कि उसने अपने आगे के लिए क्या भेजा। किसके लिए कहा जा रहा है? मैंने शुरू में क्या बताया, या अय्युहल्लज़ीना, आम लोगों को नहीं, काफरों को नहीं कहा जाता, काफरों तुम देखो तुम अपने कल के लिए क्या कर रहे हो। तो मुसलमानों, ईमान वाले जो अपने आप को कह रहे हैं ना ईमान वाले, तुम जरा देखो कि तुमने अपने कल के लिए क्या बनाया, क्या कमाई की है। यानी यहाँ पे अल्लाह ताला क्या बता रहे हैं, प्लानिंग करो, प्लानिंग अपने कल की। तुम यहाँ की प्लानिंग करते हो ना, कल वो कल नहीं कि आज अगर वेंसडे है तो कल मीन्स थर्सडे, तो मैंने कल के लिए मैंने क्या पकाना है और क्या मैंने रखा हुआ और कल के लिए मेरे पास पैसे हैं या नहीं है। नहीं, ये वो कल जो आने वाला है, जो जस्ट अगर आज तुम्हारा ये कदम अगला पड़ता है अगली दुनिया में कि हम यहां से जाते हैं और अगर हमें मौत आ जाती है तो हमारा अगला कदम किधर है? अगली दुनिया में, वो है हमारा कल। चाहिए कि हर एक देखे कि उसने अपने कल के लिए क्या किया, क्या कमाई की है, क्या बना के रखा हुआ, क्या सोचा हुआ। तो क्योंकि जो वहां नाकाम हो गया वो है असल नाकाम, वहां पे जाके पता चल जाएगी डेफिनेशन कामयाबी की भी और नाकामी की, ये कामयाबी होती क्या चीज है और नाकामी क्या चीज होती है, ये वहां जाके पता चलेगा। आज इसलिए नहीं पता चलता कि आज हमारे दिमाग के आगे या हमारी आंखों के आगे दुनिया है, ये जब दुनिया का पर्दा हटेगा ना उसी वक्त पता चल जाना है कामयाबी क्या है। जिस दिन वहां पे ऐलान होगा फलां फलां की बेटी आज नाकाम हो गई है, उसकी नेकियां घट गई और उसके गुनाह बढ़ गए, ये नाकाम हो गई, अब पता चलेगा फेलियर क्या चीज होती है। बोला जाएगा, बताया जाएगा, ऐलान किया जाएगा फलां फलां की बेटी, बाप का नाम भी आएगा, फलां फलां का बेटा आज नाकाम हो गया। अब ये कभी कामयाब नहीं होगा क्योंकि वो नाकामी सबसे बड़ी नाकामी, वो खसारा सबसे बड़ा खसारा। तो आज हमें देखना है कि मैं क्यों पैदा की गई, मेरा मकसद दुनिया में आने का क्या है, मेरी जिम्मेदारी एज अ मुस्लिम क्या है, मैंने क्या करना है, ये आज सोचने का वक्त है। अल्लाह ताला ने फरमाया पुराने पाक में, वमा खलकतुल जिन्न वल इंस इल्ला लियाबुदून, अल्लाह ताला ने नहीं पैदा किया, ये नहीं फरमाया अल्लाह ने पैदा किया इंसानों और जिन्नों को, इसका तर्जुमा ये नहीं है अल्लाह ने पैदा किया इंसानों और जिन्नों को इसलिए कि वो इबादत करें मेरी, ये नहीं। वमा खलकतुल जिन्न वल इंस, नहीं पैदा किया अल्लाह ने जिन्नों और इंसानों को, क्या मतलब हुआ कि किस पर्पस के लिए पैदा किया, किसी और पर्पस के लिए नहीं पैदा किया, माल कमाने के लिए नहीं पैदा किया, जॉबें करने के लिए नहीं पैदा किया, आपको शादियां करने के लिए और मां बनने के लिए नहीं पैदा किया गया, ये आपका मकसद नहीं है। मकसद, एक मकसद होता है ना किसी चीज का, ये आपका मकसद नहीं है। इस मकसद के लिए नहीं पैदा किया, तो फिर किस मकसद के लिए पैदा किया? इल्ला सिवाय इसके कि वो इबादत करें, वो मेरी गुलामी करें, इसके लिए पैदा किया क्या तुमने? तो तुम्हारा तो और कोई भी मकसद नहीं था सिवाय इसके कि अल्लाह की गुलामी करना, लेकिन तुम किस में पड़ गए? तुम दुनिया में ऐसे गुम हुए कि अब तुम्हें यही याद नहीं रहा कि मैं किसी की गुलाम भी हूं। तुम अपने आप को आजाद समझते हो, कौन हमें बताएगा कि हम क्या करें? कोई है जिसकी मिजाल हो कि हमें बताए? हम फ्री लाइफ गुजारेंगे, हम आजाद हैं, हमारा जैसा जी चाहे हम रहेंगे, मैं जैसे चाहूं जिंदगी गुजारूं। आज मेरा ये नुक्ता नजर हो गया, आज मैं लाइफ को ऐसे देखती हूं, और ऐसे दुनिया की दौड़ में दौड़ी चली जा रही कि जो कसरत की चाह है ना, इसने तुम्हें गाफिल कर लिया। और तुम्हें जाग कब आएगी, कब आंख खुलेगी? हत्ता ज़ुर्तुमुल मकाबिर, जब तक तुम कब्रों में ना पहुंच जाओ उस वक्त तक तुम्हें होश नहीं आना। इतने गाफिल हो गए, भाग भाग के इतना तेज दौड़ना है, और इस दौड़ ने तुम्हें गाफिल कर दी कि और मिल जाए, बस तुम कब्रों तक पहुंच जाओगे। किसी दिन और की भी चाह खत्म होती है, अभी तक हुई है। जो 80 साल का भी होगा उससे भी पूछे, उसको भी नहीं और की चाह खत्म हुई, वो भी कहता है कि और बुढ़ापे में भी इंसान कहता है और मिल जाए। किसी दिन इंसान नहीं कहता बस अब नहीं मुझे और चाहिए, और पैसे मिल जाए, और कपड़ा मिल जाए, और जूता मिल जाए, और जेवर मिल जाए, और दुनिया ही और चाहते हैं। तो अल्लाह ताला ने फरमा दिया, इसी वजह से कुरान पाक में बार बार एक जैसे सूरह मुनाफिकून में अल्लाह ताला ने फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुल्हिकुम अमवालुकुम वला औलादुकुम अन ज़िक्रिल्लाह। ईमान वालों याद रखना, ये माल और औलाद ये तुम्हें अल्लाह की याद से गाफिल ना कर दे। बीवेयर, याद रखना, खबरदार रहना, क्योंकि ये दो चीजें ना इंसान को गाफिल कर देती हैं, ये दो चीजें इंसान को ऐसा गुम कर देती हैं। माल की चाहत और औलाद, सारा दिन औरतों के क्या काम है? औलाद के। मर्दों का क्या काम है? और माल जमा करने की। आज खैर औरतें भी इस दौड़ में शामिल है, साथ साथ शामिल, लेकिन ज्यादातर वो औलाद के बखेड़ों में ऐसी कि अब नमाज का ही वक्त नहीं, औलाद के इतने काम है कि अब अल्लाह के जिक्र की फुर्सत नहीं, क्या करें, बस बच्चों की फुर्सत नहीं मिलती, क्या करें, अभी बच्चे छोटे क्या करें, अभी बच्चे बड़े क्या करें, अभी बच्चे उससे बड़े, यही स्टेजेस है ना। कि वो छोटे वाली कहती है कि अभी बहुत छोटे हैं, उससे बड़े वाली कहते हैं अभी वो बहुत जिम्मेदारी है, इनकी पिक एंड ड्रॉप ही इतने मसले ना, कभी स्विमिंग है, कभी बास्केटबॉल है, कभी फलाना है, कभी फलाना, फिर वो मसले, फिर क्या करें, अभी इनकी शादियों की फिक्रें बहुत है, अब क्या करें, उसके बाद भी यहाँ पे बस नहीं होती, उसके बाद क्या करूं, अब पोते और पोती या नवासी और नवासी को संभाल रही हूँ, अब बहू जॉब कर रही हूँ, बेटी जॉब कर रही, किस दिन आपकी ये दौड़ खत्म होगी? कभी भी नहीं खत्म होगी। हत्ता ज़ुर्तुमुल मकाबिर, कब्रों को देख लोगे, ये नहीं खत्म होगी, ये नहीं जाएगी। तो हम दुनिया की दौड़ में ऐसे लगे हुए, ये दुनिया ना कयामत के दिन एक बुढ़िया की शक्ल में लाई जाएगी, बहुत जिसने मेकअप किया हुआ अपने आप को, बहुत संवारा है, बहुत बूढ़ी और करी शक्ल, उस दिन इसका मेकअप उतर जाएगा, सबके सामने आ जाएगी कि कितनी बद शक्ल है। तो उसको कहा जाएगा कि इसको जहन्नुम में फेंको, तो वो कहेगी कि जो मेरे फॉलोअर थे, जो मेरे पीछे भागने वाले थे, उनको भी तो मेरे साथ भेजा जाए, मैं अकेली क्यों जाऊं? तो लोगों को कहा जाएगा इसके पीछे तुम जाने वाले थे, वो कहेंगे हम तो इसको पहचानते नहीं, ये कौन है? वो अब उसका मेकअप उतर गया ना, तो ये दुनिया में बड़ी बनी समरी थी ना, ये इसकी असलियत थी। अब वो जब उसकी, जब ये हकीकत उसकी खुली, तो अब कोई उसके पीछे नहीं जाना चाहता। तो अब वो जब जहन्नुम में जाएगी, तो उसके पीछे इसके जो बेटे थे, जो इसके बेटे बने हुए थे, उनको भी जहन्नुम में जाना पड़ेगा, उनको भी उसी में झोंक दिया जाएगा। ये नहीं कहा जा रहा आपको कि रहबानियत इख्तियार कर लो, ना कोई शादी करे, ना कोई कपड़ा बनाए, ना कोई घर बनाए, ये नहीं कहा जा रहा। ये दुनिया जरूरत है, मगर मकसद नहीं है, हमने मकसद बना लिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया कि दुनिया में कैसे रहो? जैसे एक मुसाफिर, हम सब सफर करते हैं ना, सफर से इतनी मुमासलत है, ये दुनिया का ये भी हमारा एक सफर ही है, इसकी इतनी मुमासलत है। जब इंसान मुसाफिर होता है, सफर में होता है, तो उसके जेहन पे, अच्छा आप थोड़ी देर के लिए इमेजिन करें, آپ پاکستان جانے لگتے ہیں, اب آپ ایئرپورٹ گئے, آپ کے ذہن میں کیا چیز ہے؟ منزل, میرا سفر کر جائے, میں منزل تک بس خیریت سے پہنچ جاؤں, ہے نا. ساری فکر بس ہی ہوتی ہے, فلائٹ بھی ٹائم پہ چل پڑے, بس کوئی سامان بھی میرا خیریت سے پہنچ جائے, سب میرا سفر بھی آرام سے گزر جائے. یا آپ کو یہ فکر ہوتی کھاؤں گی کیا, چلو تھوڑی دیر کے لیے ڈنکن ڈونٹ پہ بیٹھ جاؤں, تھوڑا ڈونٹ کھاؤں, کافی پیوں, اچھا پلاؤ بریانی کہاں سے ملے گا. یہ تو کسی کو نہیں فکر ہوتی نا. کیا فکر ہوتی ہے؟ بس سفر صحیح سے کٹے, بس سفر یہ کٹ جائے, میں منزل تک خیریت سے پہنچ جاؤں. یہی ہے اس دنیا میں بھی, کہ انسان کو یہ نہیں دیکھا کہ بس یہاں پہ آرام مل جائے, یہاں پہ یہ سہولت ملے, یہاں پہ فلاں ملے. اس کا کیا کہ منزل تک, میری منزل کیا ہے؟ جنت, میں وہاں تک خیریت سے پہنچ جاؤں. یہاں پہ اگر کوئی مشکل, سفر میں کتنی مشکلات ہوتی ہیں سب کو پتا ہے کہ جب جاؤں گی سامان بھی اٹھانا پڑے گا, کندھے بھی دکھیں گے, اتنی دیر بیٹھنا بھی پڑے گا, اتنا لمبا سفر بھی ہے, سیٹیں بھی تنگ ہیں, پھر بھی آپ سفر کیوں کرتے ہیں؟ منزل کے شوق میں, وہاں پہنچنے کے شوق میں کرتے ہیں نا یہ سفر, کیونکہ آپ کو اپنے پیاروں سے ملنا ہوتا ہے. تو جن کو جنت کا بھی شوق لگ جاتا ہے نا, وہ یہاں کی بھی مشکل برداشت کر لیتے ہیں, یہاں کی تنگی. اب وہ اتنی سی سیٹ ہے, اس میں آپ 16-16 گھنٹے بیٹھتے ہیں, ہے نا. گھر میں آپ کو بٹھایا جائے کبھی بھی نہ ایسے بند ہو کے بیٹھے, لیکن بیٹھتے ہیں نا, جیسا بھی وہ کھانا دیتے ہیں کھا لیتے ہیں چپ کر کے. اتنا چھوٹا سا باتھ روم ہوتا ہے, اس کے اندر بھی بس جیسے تیسے بھی گزارا کرتے ہیں, کیونکہ آپ کو پتا ہے یہ سفر ہی تو ہے. اسی طرح یہ زندگی کا سفر ہے. یہاں پہ اگر جو بندہ منزل پہ نظر رکھتا ہے نا, یہاں پہ کوئی پریشانی آتی بھی ہے تو وہ کہتا ہے, کیا کہتا ہے, وہ اسے سمجھوتا کر لیتا ہے, سفر ہی تو ہے, کوئی بات نہیں. پھر تو منزل کو پہ پہنچ جانا ہے, وہاں پہ پھر کوئی پریشانی نہیں. پھر اپنے گھر پہنچ جاؤں گی نا, وہاں پہ آرام ہی رہوں, وہاں پہ جا کے آرام کروں گی. یہ جو جنت کا شوق رکھنے لگتے نا, پھر وہ ایسے ہو جاتے. پھر دیکھیں آپ ایئرپورٹ پہ بیٹھتے ہیں تو وہاں پہ اعلان ہوتے ہیں, جو ہی کوئی بھی اناؤنسمنٹ ہونے لگتی ہے نا, آپ کے کان کھڑے ہو جاتے, میری فلائٹ کی تو نہیں ہے نا. تھوڑا انسان, اچھا جو وہاں پہ چائے بیچ رہا ہے, جو کیفیٹیریا میں ہے, وہ جو یہاں پہ ٹھپے لگانے لگا ہوا ہے, وہ نہیں اناؤنسمنٹ سن رہا, لیکن آپ کتنے الرٹ ہوتی ہیں کہ میری تو نہیں اناؤنسمنٹ ہو رہی. کیوں؟ اس لیے کہ آپ کی فکر یہ ہے کہ مجھے جانا ہے. وہ جو وہاں پہ رہنے والا ہے اس کو نہیں فکر ہے, وہ تو وہاں پہ ٹھپے لگا رہا ہے, وہ وہاں پہ چائے بیچ رہا ہے. اسی طرح جو یہاں پہ رہنے کا سوچتا ہے نا, اس کو نہیں فکر کہ کیا اعلان ہے. اعلان کیا ہے ہمارے لیے؟ قرآن. یہ ہے اعلان اللہ کی طرف سے. یہ اعلان ہو رہے ہیں کہ کدھر جانا ہے, کس طرح جانا ہے, آپ کی فلائٹ کس وقت ہے. آپ اس اعلان کو غور سے سنتے ہیں, ویسے ہی فالو کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں گیٹ نمبر فلاں پہ پہنچ جائیں, آپ فوراً اٹھ کے چل پڑتے, بچوں کو چپ کرو, اناؤنسمنٹ سنو, ہماری فلائٹ کی تو نہیں اناؤنسمنٹ. تو یہ قرآن نا اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ اناؤنسمنٹ ہے. جب وہ کہتے ہیں متوجہ ہو جائیں, خواتینوں اور ذرا متوجہ ہوں, آپ کے کان کھڑے ہو گئے. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں کیا فرماتے ہیں؟ یا ایھا الذین آمنوا, آپ کے کان کھڑے ہو جانے چاہیے. اب میرے لیے اعلان آ گیا, میں نے کیا کرنا. یہ ایسے ہی ہے, جب آپ نے اپنے آپ کو مسافر سمجھا تو آپ ہر اعلان کے اوپر اس طرح الرٹ رہیں گے, چوکنے رہیں گے, چوکس رہیں گے, یا وہاں پہ سو جائیں گے تکیا رکھ کے, کوئی بات نہیں فلائٹ جائے تو جائے, مجھے کیا. ایسے تو کوئی بھی نہیں کرتا نا, چوکنے بیٹھے رہتے. تو یہ پھر اسی طرح آپ دیکھیں, آپ جب جاتے ہیں تو آپ کے پاس پاسپورٹ بھی صحیح ہوتا ہے, آپ کی وہ ایکسپائر بھی نہیں ہوا ہوا, سب چیز آپ دیکھ کے جاتے ہیں نا. یہ جو ہمارا پاسپورٹ ہے اس وقت, وہ کیا ہے کہ اس کے اوپر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر لگی کہ ہم ان کی امت میں سے. جو پچھلی امتوں والے ہیں وہ پاسپورٹ ایکسپائر ہو گئے, جو یہود و نصارہ وہ سب پاسپورٹ وہ ان کے وقت میں تھے, وہ ایک ڈیٹ تک تھے, اب وہ کیا ہے ایکسپائرڈ, اب ان کے اوپر ٹریول نہیں ہو سکتا. آپ کے پاسپورٹ پہ امت محمدی ہونے کی مہر لگی ہونی چاہیے, سٹیمپ لگی ہونی چاہیے, تب آپ ٹریول کر سکتے ہیں. پھر اسی طرح دیکھیں, جب آپ جاتے ہیں تو آپ کو اینڈ تک جہاز میں انٹر ہونے تک وہ کیا دیکھتے ہیں؟ بورڈنگ پاس, ہے نا. اور وہ بالکل اب جہاز میں جب جانے لگتے ہیں تب بھی وہ بورڈنگ پاس چیک کریں گے. تو ہمارا بورڈنگ پاس کیا ہے؟ ہمارا بورڈنگ پاس یہ قرآن کا نور ہے. یہ اینڈ میں پل صراط ہے, جنت سے پہلے کیا ہے؟ پل صراط ہے, جس سے سب کو گزرنا ہے. ساری منزلوں کے بعد آخر میں پل صراط کی منزل ہے, وہاں پہ بھی جا کے چیکنگ ہونی ہے. وہاں پہ جس کو نور مل جائے گا یہ بورڈنگ پاس اس کو مل گیا, اور بعض لوگوں کو نور نہیں ملے گا. جو منافقین ہوں گے ان کے پاس کوئی نور نہیں ہوگا, تو وہ ایمان والوں سے کہیں گے ذرا اپنے نور میں سے ہمیں نور دے دو. यहाँ पे तो बिल्कुल अंधेरा है, हमें थोड़ी सी रोशनी चाहिए, पुल से रात कैसे क्रॉस करेंगे? तो वो कहते हैं यहाँ से थोड़ी मिलेगा नूर, वो तो पीछे से मिलता है। वो आपके साथ वाला बंदा कहे अपना बोर्डिंग पास जरा आधा करके ना मुझे दे दो, ऐसे हो सकता है कोई? नहीं हो सकता। आप कहते बोर्डिंग पास पीछे मिलेगा, वहां जाए आप। आखिर तक ये बोर्डिंग पास चेक किया जाएगा, वहां तक कि किसके पास नूर है वो ही क्रॉस कर सके। तो अगर आप शुरू से, ये तो मैंने छोटी सी मिसालें आपको दी, शुरू से आखिर तक देखो तो वाकई ये सफर ही है। और ये सफर कहाँ खत्म होना, ये मंजिल पे जाके, और वो मंजिल है जन्नत। और हम तो लग ही नहीं रहते हम किसी सफर में, हमने तो इसी को कयाम गाह बनाया हुआ, परमानेंट रेजिडेंट है यहाँ पे, परमानेंट कोई नहीं है यहाँ पे। वो कहते हैं अब्दी आरामगा, कब्र को कह देते, वो भी अब्दी आरामगा नहीं है, वहां से भी उठना। अब्दी तो जगह वही है जहां पे इंसान को फाइनल जो उसकी डेस्टिनेशन है वो जन्नत भी हो सकती है और जहन्नम भी हो सकती है। तो ये सारा का सारा सफर है, अल्लाह ताला ने फरमाया अफा हसिब तुम अन्नमा खलकनाकुम अबथ, क्या तुमने ये सोचा हुआ कि हमने तुम्हें ऐसे ही भिखारी पैदा कर दिया कि तुम यहाँ पे आओगे, मजे करोगे, बच्चे पैदा करोगे, सारा दिन और रात की रूटीन में चलते रहोगे और उसके बाद बस वापस आ जाओगे, और हमने बस वैसे भिखारी तुम्हें पैदा किया, कुछ नहीं तुमने करना? नहीं, तुम्हारा एक मकसद है। अल्लाह ताला ने कोई चीज इस दुनिया में बेकार नहीं पैदा की, हर एक का कोई ना कोई मकसद बनाया, और तुम्हारा भी एक मकसद है। उस दिन अल्लाह ताला ने फरमाया कि उस दिन तो बला कादीन अला अन नसविया बनाना, अल्लाह ताला ने सूरह क़यामा में फरमाया ना, अल्लाह तो इस पे भी कादिर है कि ये तुम्हारे जो फिंगरप्रिंट्स है ना, ये भी ऐसे ही जैसे तुम्हारे आज है इसी तरह करके तुम्हें उस दिन उठाएगा, इसी तरह एज इट इज तुम उठोगे इन्हीं जिस्मों के साथ, कि तुम्हारे प्रिंट्स भी वही होंगे जो दुनिया में थे। आज पता चल रहा है, आज साइंस बता रही है ये यूनिक है, हर एक के फिंगरप्रिंट्स किसी के दो के मैच नहीं करते पूरी दुनिया में। अल्लाह ताला ये प्रिंट्स तक तुम्हारे ऐसे ही कर देगा, तुम्हें इसी तरह उठाएगा। तुम क्या समझते हो तुमने ऐसे ही भाग जाना, छुट्टी हो जाती ना फिर तो हम मर जाते, खत्म हो जाते, मट्टी हो जाते, सफाया हो जाता हमारा, छुट्टी थी, जो मर्जी करते आप भी, जो मर्जी करते हम भी, ऐश करते, मजे करते, लूटो खसूटो, खाओ पियो, मजे करो और जाओ, ऐसे ही दुनिया का नॉर्म है, लोग चल रहे हैं। नहीं, लेकिन छुट्टी नहीं है ना, मसला ये तुम खड़े किए जाओगे और अल्लाह के सामने जवाब दोगे। यकूलुल इंसानु यौमा इज़िन अयनल मफर, सूरह क़यामा में अल्लाह ताला फरमाते तब इंसान कहेगा आज भागने की जगह कहाँ है, किधर भाग के जाऊं, आज छुपा लो मुझे कोई, आज बचा लो मुझे कोई। कल्ला ला वज़र, अल्लाह ताला फरमाते आज नहीं कोई छुपने की जगह, आज नहीं कोई ठिकाना, आज नहीं कोई पनागा। इला रब्बी का यौम इज़िन मुस्तक़र, आज करार कहाँ पे है, करारगाह कहाँ है, अल्लाह के सामने खड़े हैं आज, अल्लाह के पास जाके तुम ठहरोगे, आज कहीं भाग के नहीं जा सकते। उस दिन इंसान चाहेगा ना, जाहिर है जैसे आज हम ये कह रहे हैं हमारी तो कोई तैयारी नहीं, तो आज अगर चले जाते हैं वहां पे तो फिर तो भागना चाहेंगे ना कि अरे तैयारी तो कुछ है नहीं मेरी, अब क्या करूं। युनब्बाउल इंसान यौम इज़िन बिमा क़द्दम व अख़र, अपने फोन जरा प्लीज बंद कर देंगे सब। उस दिन इंसान जानेगा, उसको बताया जाएगा जो उसने आगे भेजा और जो पीछे छोड़ा। बल इंसानो अला नफ्सिही बसीरा, इंसान को बड़ी अच्छी तरह पता है, बड़ी अच्छी तरह पता है कि वो क्या करता है। वलौ अल्का मआज़ीरा, चाहे वो कितनी माजरतें दे, चाहे वो कितने एक्सक्यूजेस घरे, नहीं मैं क्या करूं, मेरे पास टाइम नहीं था, क्या करूं, नहीं बच्चे छोटे थे, जॉब के भी मसले थे, ये था वो था वो था वो था, और जितनी मर्जी एक्सक्यूजेस दो, माजरतें दो, बल्कि इंसान वाला नफ्सी ही बसीरा, इंसानों खुद अंदर पता है, अंदर से वो खुद जानता है कि मैं क्या कर रहा हूं और ये मेरे बहाने हैं या क्या है, और जिन चीजों के लिए मैंने वक्त निकालना होता है उनके लिए मैं कैसे निकालता हूं, इंसान खुद जानता है, इंसान अपने ऊपर खुद गवाह है इस बात का, वो कुछ को पता है। चाहे जितनी माजरतें देते रहे, आपके पास एक्सक्यूजेस की इतनी लंबी भी लिस्ट हो ना, आपके अंदर आपका जमीर आपको कहता है कि नहीं गलत कर रही है, गलत कह रही है। छोटे बच्चों के साथ तुम मॉल में फिरती हो, छोटे बच्चों के साथ तुम शादियों पे जाती हो, छोटे बच्चों के साथ भी तुम जॉबें करने के लिए जाती हो, लेकिन तुम्हें यही यही काम करना जो अल्लाह के लिए करना होता है, जो आखिरत के लिए बनाना है, यही तुम्हारे लिए मुश्किल है। अंदर कहता है, हम उसको चुप करके बिठा देते, चुप कर नहीं क्या करूं ये, नहीं क्या करूं वो, अपने आप को भी सुनाते रहते हैं। अल्लाह ताला उस दिन फरमाएंगे, आज तुम जितनी मर्जी माजरतें दो, तुम्हारा अंदर बताएगा, अंदर तुम्हारा गवाह है, तुम्हारी ये सारे जो बहाने हैं ना, ये सब बेकार, ये सब ऐसे ही है, वाकई बहाने हैं। क्योंकि जो जिस चीज का इंसान अजम कर लेता है ना कि मैंने ये करनी है, उसको कर ही देता है, और जिसमें नहीं करना होता उसमें दुनिया जहान के हमारे पास टाल मटोल है कि नहीं है बता। तो अल्लाह ताला फरमाएंगे वलाउ अल्का माअज़ीरा, तुम अब बहाने करो या जो भी कुछ करो, लेकिन तुम खुद जानते हो कि तुमने क्या किया। तो बहाने तो वहां पे चलने नहीं, और अल्लाह ताला ने तुम्हारे ये जो माल है जो समेट के यहाँ पे अकाउंट बना रहे हो, ये भी नहीं देखने। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह ताला तुम्हारी शक्लें और माल नहीं देखता, तो तुम कितनी खूबसूरत हो, कितनी तुम्हारे तुमने अपनी स्किन की केयर की हुई है, कितनी तुम अपना ख्याल रखती हो, और ना ही तुम्हारे माल देखता है कि तुम्हारे बैंक अकाउंट कितना है, तुम्हारी सेविंग्स कितनी है, तुम्हारी जायदादें कितनी है। अल्लाह ने ये नहीं देखना और ना देखता है। वो क्या देखता है? वो तुम्हारे दिलों को देखता है, तुम्हारी नीयतों को देखता है। दो चीजों को अल्लाह ताला ने दो के साथ कंपेयर किया। दो चीजें जो अल्लाह ताला नहीं देखता वो क्या है? माल और शक्ल। और हमारा ज्यादा टाइम किस पे गुजरता है? सारा दिन शीशा देखने में, जो घर पे रहते हैं, कैसे बाल हैं, कैसी लग रही हैं, ये मेकअप कर रही है, कितने कितना टाइम शीशे के आगे गुजरता है। और या फिर माल कमाने में, वो जिनको शीशे का होश नहीं है वो इसलिए नहीं है क्योंकि जॉब का टाइम हो गया, छोड़ो हमारे पास तो शीशा देखने का टाइम नहीं, मुंह धोने का टाइम नहीं। ये दो चीजें अल्लाह ने देखनी है, और दो चीजें जो अल्लाह ने देखनी है उनके लिए हमारे पास वक्त नहीं। दिल देखने, दिलों में क्या है, कितना ईमान है, कितनी अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत है, कितनी उसके दीन की मोहब्बत है। क्योंकि जितनी दिल में मोहब्बत होगी उसके मुताबिक ही अमल होगा। नीयतें क्या है तुम्हारी, ये अल्लाह ने देखनी। तो इंसान अगर देखे तो जिन चीजों को अल्लाह ताला ने फरमा दिया कि ये मैं ये देखने वाला हूं, उनमें तो हमारा नंबर जीरो है। और जो जिसके कोई नंबर ही नहीं है उनमें हम ए ग्रेड लेने के लिए भाग रहे हैं। तो अल्लाह ताला ने जो अल्लाह को भूल के जिंदगी गुजारता है ना, जो अल्लाह ताला की तरफ नहीं आता, अल्लाह ताला उसके लिए ये दुनिया की जिंदगी भी मुश्किल कर देते हैं। भाई शतम दम का अल्लाह ताला ने फरमाया मिजरेबल लाइफ कर देते हैं उस दुनिया की। भागो फिर, चाहे माल के पीछे भागो, चाहे और चीजों के पीछे भागो, तुम्हें सुकून फिर भी नहीं मिलेगा, सुकून नहीं आएगा, चैन नहीं आएगा, और ये हवेस कभी खत्म भी नहीं होगी, ये दौड़ कभी खत्म नहीं होगी कि तुम एक दिन कह दो कि बस अब मैं 2020 में मैं फारिग हो जाऊं, मैं 2016 में फारिग हो जाऊंगी, फरागत कभी नहीं आएगी। क्योंकि एक काम खत्म होगा तो दूसरा शुरू हो जाएगा। अल्लाह ताला ने फरमाया ऐ इब्ने आदम, हदीसे कुदसी है, अल्लाह ताला फरमाते हैं ऐ इब्ने आदम मेरी इबादत के लिए तू फारिग हो जा, तो मैं तेरा सीना गिना से भर दूंगा, तवंगरी से भर दूंगा, बेपरवाह कर दूंगा, यानी तुझे ये नहीं होगा हाँ ये रह गया, ये रह गया, बेचैनी, बेकली, बेपरवाही अल्लाह ताला दे देंगे आपको, और तेरी फकीरी को मैं और तेरी मोहताजी को मैं दूर कर दूंगा। अल्लाह दूर कर देगा आपकी फकीरी मोहताजी अगर आप अपने आप को फारिग करेंगे अल्लाह के लिए, और अगर तूने ये ना किया तो तेरा दिल मैं मशगलों से भर दूंगा, ये काम ये काम ये काम। हाँ ये कहते सारा दिन काम ही नहीं खत्म हो, काम होता कुछ भी नहीं है, बिल्कुल भी, कहते सारा दिन काम ही नहीं खत्म होते। किसी ने मुझे कहा उनके दो बच्चे हैं और दोनों स्कूल गोइंग है माशाल्लाह, दोस्त ने कहा मुझे तो समझ ही नहीं आती मैं वक्त कहाँ से निकालू, वक्त ही नहीं मेरे पास। मैंने कहा क्यों आप जॉब करती हैं? कहती नहीं जॉब भी नहीं करती। तो फिर घर में होती हैं? हाँ घर में होती हैं। तो फिर सारा दिन क्या करती हैं? मेरी तो समझ से बाहर है कि सारा दिन क्या करती है। कितना खाने बनाते हो आप घर में? तो क्या रोजाना एक बड़ा दस्तरखान बिछता है? कितनी सफाइयां करते हो? कितनी करोगे? कितनी लॉन्ड्री कर, यानी दो बच्चे और दो मियाँ भी हैं बस, मियाँ सुबह से जॉब पे चला गया, आप सारा दिन घर है, क्या कर रहे हो सारा दिन? इसलिए कि वाकई जब तुम अल्लाह के लिए अपने आप को फारिग नहीं करते ना, अल्लाह तुम्हारा दिन मशगलों से भर देते, ये मशगला ये मशगला ये मशगला, और अल्लाह ताला फरमाते हैं और तेरी फकीरी को मैं बंद ही नहीं करूंगा। हर वक्त तू मोहताज ही रहेगा, हर वक्त इंसान हाय हाय ही करता रहता है, हाय ये कमी, हाय ये कमी, हाय पूरा नहीं पड़ा, हाय हाय हाय, उसकी हाय कभी खत्म नहीं। और जो अपने आप को अल्लाह के लिए फारिग करता है, अल्लाह ताला टेक केयर करते हैं फिर उसके सारे मामला। आपको देखें ये कोई ना गलत फहमी इसमें ना रहे कोई ये कहा जा रहा है कि कुछ ना कोई काम करे कोई ना कोई, देखिए काम करना एक अलग चीज है, एक सारी जो जरूरतें हैं हमारी वो पूरी करने के लिए एफर्ट करना एक अलग चीज है, मगर ये चीजें क्या है इनकी मिसाल देखें मैं आपको इस तरह देती हूँ। जैसे आपने देखा है कश्ती चलती है समुन्द्र में, चलती है तो क्या होता है पानी में ही चलती है, चलती है और अपनी मंजिल तक पहुंच जाती है, और समुन्द्र की लहरें जो है ना उसको आगे से आगे बढ़ाती रहती है, वो अपनी मंजिल तक पहुंच जाती है। लेकिन यही समुन्द्र कभी इस कश्ती को डबो भी देता है, जब क्या होता है पानी कश्ती के अंदर चला जाए तो कश्ती डूब जाए। यही मिसाल समझे इस दुनिया की, ये दुनिया जो है ना ये समंदर है और ये कश्ती है जो हम है, मेरा दिल है मेरी जात है, जब तक तो इसके ऊपर ऊपर चलते रहोगे मंजिल तक पहुंच जाओगे, लेकिन जब इसको अपने दिल में डाल दिया ना, इस पानी को बाहर से उठा के दिल में डाल दिया तो डूब जाओगे। फिर वो कश्तियां क्या होती हैं, फिर समंदर के रहमो करम पे होती है, वो देखिए बड़े बड़े शिप्स को डबो देता है, तख्ता तख्ता कर देता है, तार तार कर देता है, उनका मुकद्दर क्या हो जाता है डूबना। इसी तरह जब दुनिया की मोहब्बत दिल में आ जाती है ना तो इंसान गर्क हो जाता है, ये बाहर रहे दिल में ना आए, रहना आपने इसी में है, चलना आपने इसी में है, इसी में से चल के इसी में से गुजर के मंजिल तक पहुंचना, लेकिन इसको अंदर नहीं आने देना। ये ऐसे ही है जैसे टूल होता है, आपको टूल्स दे दिए जाए, आपको कहा जाए हथौड़ी है ये आपके पास, कील है ये आपके पास, ये सब चीजें हैं, इससे आपने अपना घर बनाना। अब आप हथौड़ी को देखिए कहीं ना कितनी प्यारी हथौड़ी है, इसको तो मैं अपने पास रखूँ, सीने से लगा के रखूँ, इससे तो मैंने कोई काम करना, कील कितने खूबसूरत कितने चमकीले, उन्हीं को आप मोहब्बत से रखती रहें उन्हीं को चमकाती रहें, तो आपने तो मकसद पूरा ही नहीं किया। ये हथौड़ी और कील तो इसलिए दिए थे कि आप क्या करें अपना घर बनाएं, आपने उन्हीं को चमकाना शुरू कर दिया। ये सब कुछ इसलिए दिया कि आप इससे अपनी आखिरत बनाएं, इसी माल से भी इसी औलाद से भी आप अपनी आखिरत बना सकते हैं, कि जब आप दुनिया से जाएं यही औलाद आपके लिए सदका जारिया बन जाए, यही माल आपके लिए सदका जारिया बन जाए, आप इसी माल से आप अपने लिए जन्नत खरीद सकते हैं। अगर आप उसी में गुम हो गए तो फिर तो आप डूब गए ना, तो इसमें नहीं गुम होना। लेकिन क्या करें, अब हम किस तरह से अब इससे निकलें, कैसे अपने आप को सीधे रास्ते पर लेकर आए, कैसे हम अल्लाह ताला की इबादत करें, कैसे हम अपने आप को सीधा रखें, इसका एक ही तरीका है और वो तरीका है पहला स्टेप कि अल्लाह के कुरान की तरफ आए, इससे अपना ताल्लुक मजबूत करें, इससे जुड़े, ये अल्लाह का जिक्र है, ये आपको बताएगा कि अल्लाह ताला की इबादत कैसे करनी है। जो मैंने आपको बताया ना वमा खलकतुल जिन्ना वल इंसा इल्ला ली, अल्लाह ताला ने इसीलिए पैदा किया ना इबादत के लिए, वो इबादत कैसे करेंगे। अब इबादत को कौन सी कोई चीज है कि कोई काम करना है, वो कुर्सी उठा के इधर से उधर रखनी, क्या ये इबादत है, क्या चीज इबादत है, मुझे क्या पता चलेगा, क्या करूं, मुझे तो कुछ समझ नहीं आती कि इबादत कैसे करूं, तो ये कौन बताएगा, ये कुरान बताता है। ये कुरान वो रास्ता है जो इंसान को उस मंजिल तक पहुंचाता है जो मंजिल जन्नत है, ये आपको बताता है, ये आपको डायरेक्शंस देगा, जैसे हम जीपीएस के जरिए अभी यहां तक पहुंचे ना, हमें डायरेक्शंस देता गया कि कहां से जाना है किधर चलना है, इधर राइट लेफ्ट राइट, फिर हम यहां पहुंच गए। तो ये कुरान आपको बताएगा देखो इधर चलो इधर नहीं चलो, ये करो ये नहीं करो, इधर जाना है इधर नहीं जाना, इधर खतरा है इधर अल्लाह ताला की रजा है, ये कुरान है, ये इसका रास्ता है, ये आपको बताएगा अल्लाह की गुलामी कैसे करनी है, क्योंकि हम इतने निकम्मे हैं कि हम ये भी नहीं जानते अल्लाह हम तेरी गुलामी कैसे करें। इबादत का मतलब क्या, अल्लाह की गुलामी, अल्लाह हम ये भी नहीं जानते कैसे करें गुलामी, हमें तो नहीं समझ, इसमें भी हमें तेरी मदद चाहिए, इसीलिए हम कहते हैं ना इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, हम सिर्फ तुझसे मदद चाहते हैं, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, अल्लाह हमें सीधे रास्ते पर तूने चलाना, तू चला दे मंजिल तक तू पहुंचा दे। तो अल्लाह ताला फिर दिखा देते पूरा कुरान वो रास्ता है, ये रास्ता है जिस पे चलो, अल्लाह ताला ने ये आपको जीपीएस दे दिया, ये आपको बता दिया ये डायरेक्शंस है, इसको फॉलो करते रहोगे तो मुझ तक पहुंच जाओ। तो पहला स्टेप उठाइए कि इसके साथ ताल्लुक मजबूत करें, और उसके लिए क्या जरूरी है कि हम इसको समझें सबसे पहले कि ये कहता क्या है, वो डायरेक्शन की जब तक समझ ना आए, मैं डायरेक्शन अपना जीपीएस फ्रेंच में कर लूं तो क्या यहां तक पहुंच सकती थी, मुझे तो फ्रेंच आती ही नहीं, मुझे क्या पता वो क्या कह रहा है किधर जाना, हमें अगर ये नहीं समझ आ रही कि ये कुरान क्या हमें बता रहा है, किधर जाने का कह रहा है, तो मैं 10,000 दफा भी इसको रमजान में 10-10 दफा भी इसको खत्म कर लूं नाजरा पढ़ के, तो मैंने उसका असल मकसद पूरा नहीं किया। अल्लाह ताला ने तो फरमाया ना, ये हुदन है, हिदायत है, ये रहनुमाई है, गाइडेंस है, ये तुम्हें गाइड करता है कि तुमने किधर जाना। अगर आपने इससे गाइडेंस नहीं पाई, बाकी सारे काम ले लिए, तो फिर इसका असल मकसद पूरा नहीं है। इसके मुताबिक तो चलना था, तो इसके मुताबिक चलने के लिए जरूरी है कि हम इसको समझें पहले क्या ये कह रहा है, और इसके लिए आपको एफर्ट करनी पड़ेगी, थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। अभी मैंने आपको बताया ना कि जो अपना दुनिया का नुकसान करेगा वो ही अपनी आखिरत बना सकेगा। तो जो भी आपका नुकसान हो रहा है, अव्वल तो अल्लाह ताला इंशाल्लाह पूरा कर देंगे। ये तो मैं आपको ये हदीस कुदसी बताई है कि जो अपने आप अल्लाह की इबादत के लिए फारिग करते ना, ये भी इबादत है, इबादत इबादत है ये। कुछ लोग शायद इसको इबादत नहीं समझते, कुरान का सीखना एक इबादत है, पता है आगे आपको, और बहुत अफजल इबादत है। कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा, तुम में से बेहतरीन हुआ जो कुरान को सीखे और सिखाए। यानी ये इतनी बेहतरीन इबादत है, ये इंसान को बेस्ट इंसान बना देता है। तो इसके लिए इंसान खुशी करे, जैसे मिसाल के तौर पे ना आपका कहीं एडमिशन हो जाता है, मसलन चले आपका तो नहीं, आपके बच्चे का प्रिंसटन में या कोई बहुत बड़ी कोई हार्वर्ड में वो उसका एडमिशन हो गया, तो आप फखर से बताती करती हैं, मेरे बेटे का ना पता प्रिंसटन में एडमिशन हुआ, वो 10,000 लोगों में से सेलेक्ट हुआ, इतने लोगों में से एक उसकी सिलेक्शन हुई है, तो आप कितना फखर करते हैं। सुभान अल्लाह, जिसकी सिलेक्शन अल्लाह के कलाम के लिए हो जाए, तो क्या हार्वर्ड और क्या प्रिंसटन, जिसको अल्लाह ये चूज कर लेते, ये इन मिलियंस बिलियंस पीपल हैं इस दुनिया में, कितनी पॉपुलेशन है, उनमें से अल्लाह चूज कर ले, ये बंदा है जो मेरे कलाम को सीखने के लिए आएगा, इसकी मैंने सिलेक्शन कर ली, कितनी फखर की बात है। इस पर तो इंसान को खुश होकर बताना चाहिए दूसरों को, पता है मैं आजकल कुरान सीख रही हूँ, मैं उसकी तालिब इल्म हूँ, मैं उसकी स्टूडेंट हूँ। उसमें हमें कोई खुशी नहीं, उसको छुपाते हैं, कोई हमें दतियानूसी ना समझ ले, नहीं, खुश हूं इस बात के ऊपर। अगर आपको एक सुभान अल्लाह, ये क्या ये यूनिवर्सिटियां दे सकती हैं किसी को, या क्या ये वो कर सकती है, 4 दिन की जिंदगी का ही एक वो आना कि भाई किसी के ऊपर प्रिंसटन का ठप्पा लग गया कि इसने वहां की डिग्री ली है, वो जिस पे कुरान का ठप्पा लग गया वो तो कब्र में भी पास है और हशर में भी पास है, जहां पे ये खड़ा हो जाएगा और कहेगा, सिफारिश करेगा कि या अल्लाह इसको जाने दे, इसने मेरे साथ वक्त गुजारा, अल्लाह इसने रातें मेरे साथ गुजारी जाके, या अल्लाह ताला ये रातों में उठ उठ के मुझे पढ़ती थी, या अल्लाह इसके दिन के औकात मेरे साथ गुजरते थे, इसके हाथों में मैं होता, ये एक शक्ल में एक सूरत में क्यामत के दिन आ जाएगा और सिफारिश करेगा, इंसान के लिए झगड़ा करेगा, या अल्लाह ताला इसको जाने दे। तो ये तो डिग्रियां तो यही रह जानी है, कल को कब्र में जाओगे किस मुनकर नकीर ने पूछना तेरे पास कौन सी डिग्री थी, तुम डॉक्टर थी कि इंजीनियर थी कि कौन सी प्रोफेशनल थी तुम। आज इस पे ही फखर करते नहीं हम, बस करते कि मैं डॉक्टर की बीवी हूं और मैं खुद पता नहीं क्या चीज हूं, मैं फलानी जगह जॉब करती और मैं फलान जगह पढ़ रही। जिस दिन मौत आई ना, सारी डिग्रियां जीरो हो जाएंगी, सारे फखर खत्म हो जाएंगे, कितने भी आपके ग्रेड्स आ गए सब जीरो हैं। लेकिन ये जिसने कुरान के साथ वक्त गुजार लिया, जिसकी सिलेक्शन इसमें हो गई ना, उसका कितने बड़े मर्तबे हो गए कि जब वो पूछेंगे उनके नकीर, तो ये कुरान वहां पे होगा, ये कुरान इंसान के लिए मदद देगा, इंसान उनके सामने जवाब दे सकेगा, साबित कदम रखेगा इंसान को, ये उसका कब्र का साथी बन जाएगा, उसकी कब्र की वहशतों को दूर करने वाला बन जाएगा। कि कब्र की वहशत होगी ना, जाहिर है नई जगह, कब्र के अंधेरे होंगे, कब्र में तन्हाई होगी, तो तन्हाई को कौन दूर करेगा, कौन सी डिग्री आके दूर करेगी, कौन सी औलाद आके दूर करेगी, कौन से पैसे आपके पास होंगे कि जो वहां पे गिनते रहे या जेवर पहन के बैठेंगे, ये कुरान होगा जो साथी बनेगा। ये कहेगा मैं तेरा साथी हूं कब्र का, मैं तेरी वहशतों को दूर करने वाला, मैं तुझे कब्र से मानूस करने वाला, मैं इन अंधेरों को तेरे लिए दूर करने वाला, ये नूर बन जाएगा, ये आपको साबित कदम रखेगा। और इसकी हम अहमियत नहीं समझते। آج ہم ہمیں کہتے ہیں وہاں پہ سلیکٹ ہو گئے تو ہم میاں کو بھی کہیں گے کہ بچے بھی تم سنبھالو، مجھے وہاں پہ سلیکشن مل گئی ہے، میری اتنی بڑی جگہ پہ جاب ہو گئی ہے، میری اتنی بڑی یونیورسٹی نے مجھے سلیکٹ کیا، مجھے یو این نے مجھے بلا لیا، مجھے فلانے نے بلا لیا، مجھے فلاں جگہ پہ وائٹ ہاؤس سے مجھے پیغام آ گیا، تو میری تو وہاں پہ سلیکشن ہوئی ہے، تو یہ بھی سارا کچھ اڑے، اور وہ بھی گھر والے بھی کہیں گے کہ واہ واہ کیا بات ہے، ہم فخر کرتے نہیں تھکیں گے، اور سب کوآپریٹ کریں گے، سب تعاون کریں گے کہ واہ بھائی واہ کیا بات. اور اللہ کے کلام کی دیکھو، سبحان اللہ، اللہ اکبر، اللہ کے کلام کی آج یہ اہمیت رہ گئی ہے کہ لوگوں کو جگہ جگہ جا کے بلاتے ہیں، آ جاؤ آ جاؤ اس کلام کی طرف، اللہ تمہیں بلا رہا ہے، یہ ہماری طرف سے دعوت نہیں ہوتی، یہ اللہ تعالیٰ کسی بندے کے ذریعے پیغام دلاتا ہے آپ کو، تو فرشتے تو اتر کے آنے سے رہے کہ وہ آ کے آپ کو پیغام دیں گے کہ آ جاؤ اللہ کی کتاب کی طرف. اب کوئی بندہ ہی آئے گا نا جس کی زبان سے آپ سنو گے، تو کوئی آ کے آپ کو دعوت دیتا اور آپ کہتے ہیں ہمارے پاس کہاں ٹائم ہے، اتنی محنت ہم نہیں کر سکتے بھائی، ہمارا تو دماغ نہیں چلتا. سبحان اللہ، آج یہ اہمیت ہمارے لیے رہ گئی ہے اللہ کے کلام کے لیے، جس نے وہاں تک جانا تھا حشر تک، حشر تو کیا، جنت میں بھی اس قرآن کے نغمے ہوں گے، جنت میں بھی قرآن کے نغمے ہوں گے، قرآن پڑھا جائے گا اور ایسا پیارا پڑھا جائے گا کہ جیسا انسان نے کبھی سنا نہ ہوگا، تو یہ تو وہاں تک پہنچنے والا ہے اور وہاں تک انسان کو پہنچانے والا ہے، منزل تک پہنچا کے آئے گا یہ، اگر اس کو فالو کرتے رہے، اس کے ساتھ واقعی اس کے اوپر جمے رہے، اللہ ہمیں جما دے اس کے اوپر، لیکن اس کے اوپر واقعی اگر چلتے رہے نا، یہ منزل تک پہنچائے گا، یہ ایسا نہیں بیچ راہ میں چھوڑ جائے، ان ڈگریوں کی طرح، اس پیسے کی طرح، جو قبر میں آپ جائیں گے تو پیسہ کسی اور کا ہو گیا، ہے نا، اس نے تو آپ کا ساتھ چھوڑ دیا، کتنا بے وفا تھا، اولاد اپنے گھروں کو چلی گئی، وہ بھی ساتھ چھوڑ گئے، اور کیا چیز اہم ہے، جاب جاب تو ظاہر ہے، اگر آپ یہاں پہ دنیا میں ہی بیمار ہو گئے نا، جاب والے تو اگلے دن کہہ دینا یو آر فائرڈ، جب گھر ہی بیٹھو تم، آپ بوڑھے ہو جاتے ہیں تو وہ ویسے ہی آپ کو ریٹائر کر دیتے ہیں، آپ تم ہمارے کام کے نہیں رہے، یہ تو چیزیں دنیا میں ہی کئی تو چھوڑ جاتی ہیں، باقی جن کو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ آپ کے بہت سکے ہیں، وہ بھی آپ کو قبر تک ہی پہنچا کے آئیں گے، اس کے آگے نہیں، انہوں نے بھی نہیں جانا، لیکن یہ جنت تک پہنچا کے آئے گا، تو فائدہ مند سودا کیا ہے کہ ہم اس کے ساتھ رہیں، اس کے ساتھ اس کو چمٹا کے رکھیں، اس کے بغیر ہمارا کوئی دل نہ، اس کے بغیر ہماری زندگی نہ ہو، یہ ہے، آج آپ اس سے وفا کرو گے نا تو کل یہ آپ سے وفا کرے گا، باقی کسی سے بھی وفا کرو گے آج تو سب نے بے وفا نکلنا، آپ اپنے سامنے مرنے والوں کو دیکھ رہے، اکیلے ہی جاتے ہیں نا قبر میں، یا کچھ ساتھ لے جاتے ہیں، ہاں کوئی لے کر جاتا ہے ڈگریاں اپنی ساتھ، یا آپ ان کے ساتھ رکھتے ہیں کوئی اور چیزیں، اور بھائی آگے کام آ جائیں گی تیرے، کچھ بھی نہیں، تو پھر جو آپ کے ساتھ وفا کرنے والا ہے، آپ تو آج اس کے ساتھ وفا نبھاؤ، تبھی یہ کل کو آپ کا ساتھ دے گا، اور اگر آج آپ نے اس کو پسے پشت ڈالے رکھا نا، تو کل آپ کے خلاف گواہی دے گا قیامت کے دن کھڑا ہوگا، اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ قرآن یا تو انسان کے حق میں حجت بنے گا یا اس کے خلاف حجت بنے گا، یا تو خلاف کھڑا ہو کے گواہی دے گا کہ یا اللہ اس نے مجھے اپنے پیٹھ پیچھے ڈالے رکھا، یہ نہ مجھے اس نے نہ مجھے سمجھا، نہ مجھے سیکھا، نہ میرے اوپر عمل کیا، یہ قرآن گواہی دے گا، تو ہم کیا چاہتے ہیں، ہمارے حق میں گواہی دے یا ہمارے خلاف، کیا چاہتے ہیں، حق میں گواہی دے، تو اگر حق میں دینا چاہتے ہیں کہ یہ ہمارے حق میں کھڑا ہو جائے، اس کی ایک شکل ہو، آج تو یہ کتاب کی شکل میں نظر آ رہا ہے، اس کی ایک شکل ہو اور وہاں پہ ہمارے لیے کھڑا ہو جائے سفارشی بن کے، اور اس کی سفارش بہت سٹرونگ ہوگی کیونکہ اللہ کا کلام ہے، بہت سٹرونگ سفارش کرے گا، تو اگر یہ چاہتے ہیں تو آج اس کے ساتھ وفا نبھاؤ، اور یہ عہد کرو کہ آخر دم تک ہم نے اس کا ساتھ نہیں چھوڑنا، اس کو سیکھنا نہیں چھوڑنا، اس کے ساتھ چاہے مجھے کتنے ہی اپنے دنیا کے کام کم کرنے پڑے، نقصان کرنا پڑے کسی کا، چار پیسے کم کر لوں گی، جو گھر کی صفائیاں میری ایک دن نہیں بھی ہوتی تو قیامت نہیں آ جائے گی، چار ڈشیں گھر میں بناتی تھی یا دو ڈشیں بناتی تھی، ایک بنا لوں گی تو کوئی کبھی نہیں آ جاتی، لیکن میں اس کلام کو اب نہیں پیچھے کروں گی، تو ان شاء اللہ تعالیٰ اگر آج آپ یہ عہد کریں گے نا، کل موت بھی آ جائے گی نا، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نیتوں کو قبول کرنے والا ہے، جو اس راستے پر چل پڑا وہ اللہ کے راستے کا مسافر ہوگی، کل بھی اگر موت آ جاتی ہے تو الحمدللہ اس راستے میں ہی آئے گی، چاہے اس کو مکمل نہیں بھی کیا ہوگا نا، تو چل تو پڑے تھے نا، اللہ تعالیٰ نیتوں کو جانتا ہے، آج آپ یہ نیت کر کے اٹھیں، عہد کر کے اٹھیں کہ آخر دم تک اب میں نے اس کو سیکھا، क्योंकि ये वो समंदर है जिसके अंदर इंसान जितना गोता लगाए इसका कोई एंड नहीं। इसको सीखते ही जाओ कि इस ये अल्लाह ताला ने क्या फरमाया कि ये क्या है, जिक्र है। इसको अल्लाह ताला ने क्या फरमाया, जिक्र, यानी याद दिहानी, रिमाइंडर। हम रोज भूलते हैं ना, रोज भूल जाते हैं। अच्छा झूठ नहीं बोलना था, ओहो झूठ बोला थी, अब कोई रिमाइंडर तो होना चाहिए था, ये रिमाइंडर। हाँ ये गीबत नहीं करनी थी, ओहो वो तो हो गई मुझसे। अब कोई तो हमें याद दिहानी कराए ना। हम एक दिन दर्स सुन के तो सारी जिंदगी नहीं याद रख सकते। आप देखेंगे आज सुनेंगे कल भूल जाएगा, सारी जिंदगी तो असर नहीं रह सकता। तो कॉन्स्टेंट कोई रिमाइंडर होना चाहिए ना। तो अल्लाह ताला ने ये रिमाइंडर भेजा कि ये तुम्हें रिमाइंड कराएगा जिंदगी के हर मोड़ पे, हर दिन में। नहीं अच्छा मैंने ये बात कुरान में पढ़ी थी, ये चीज अल्लाह ताला को ना पसंद है, मैंने ये नहीं करना। ये रास्ता अल्लाह को पसंद है, मैंने इस रास्ते पर करना। नहीं मैं याद है मैंने वो चीज पढ़ी थी। आहिस्ता आहिस्ता जब आप पढ़ते जाएंगे बार 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 बार, तो आप देखेंगे एक दफा तो आपको भूल गया, दो दफा भूल गया, चार दफा भूल गया, एक दिन तो आपको याद आ ही जाएगा नहीं मैंने ये चीज पढ़ी थी और मैंने ऐसा नहीं करना। तो ये आपको वो ताकत भी देगा कि आप अल्लाह ताला के रास्ते के ऊपर चल सके सीधे। ये स्ट्रेंथ कुरान देता है। तो ये आपको ये ना सोचिएगा, इस पर फिक्र ना करिएगा कि अमल कैसे करूंगी, क्योंकि अमल भी ये खुद कराएगा। ये आपको इंशाल्लाह ताला वो एनर्जी देगा, वो ताकत देगा, ये गिजा है हमारी रूह की, ये आपको चलाएगा इंशाल्लाह ताला। तो आज ये अहद करिए। और हमारा अल्हम्दुलिल्लाह अभी नया ही कोर्स स्टार्ट हुआ तालीमुल कुरान का, जिसमें अल्हम्दुलिल्लाह हम कुरान पाक को तर्जुमे के साथ, तफसीर के साथ समझेंगे, इसकी एक एक आयत को समझेंगे, इसके साथ वक्त लगाएंगे। हफ्ते में एक दफ़ा 3 घंटे के लिए ये क्लास होती है अल्हम्दुलिल्लाह। अभी तो बल्कि उससे थोड़ा कम हो रही है, मगर 9 बजे से 12 बजे तक ये क्लास होती है। और इसके अंदर आपको कुरान पाक का लफ्जी तर्जुमा बताया जाता है, ताकि आप तर्जुमों के मोहताज ना रहें, ताकि जब कुरान पढ़ा जाए आप नमाज में खड़े हो रहे हैं और आप कुरान पढ़ें तो आपको समझ आए, आप तस्बीहात कर रहे हैं आपको समझ आए, आप दुआएं पढ़ रहे हैं आपको समझ आए, मैं क्या पढ़ रही हूँ, मैं क्या बोल रही हूँ, मैं अपने अल्लाह से क्या मांग रही हूँ। कभी भी कुरान आप तिलावत करें आपको साथ साथ याद दिहानी होती जाए। तो चूंकि ये है ही हिदायत, तो हमारा क्या मकसद होना चाहिए कि हम इसको समझें। अब जब आप इंशाल्लाह ताला इस क्लास में आएंगे तो इसको समझेंगे ना, तो ये नहीं कि आप अरबी में को तकरीरें करने लगेंगे, मगर कम से कम उस कोर्स के बाद आप कुरान की समझ पा लेंगे कि आप इसको पढ़ा करेंगे तो आपको समझ आएगी कि क्या मतलब है अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताब ला रैब फीह का मतलब क्या है, हुदन लिन्नास का मतलब क्या है, हुदन लिलमुत्तकीन का मतलब क्या है, इन सब चीजों का क्या मतलब है, क्या मतलब है कि अलम तौर कैफ फअल रब्बुका बिअस्हाबिल फील, क्या मतलब है इसका, कुल हुवल्लाहु अहद का मतलब क्या है। ये सब चीज समझ आने लगी, खुद से समझ आएगी, फिर जब पढ़ोगे याद दिहानी हुआ करेगी। तो ये मकसद है इस कोर्स का। और मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी ये कह सकेगा कि मैं अपने अल्लाह के लिए, उसके कलाम के लिए पूरे हफ्ते में भी 3 घंटे नहीं निकाल सकता। पूरे हफ्ते में हर रोज नहीं बैठना, एक दफा बैठना है, एक दिन बैठना। तो ये तो बहुत ही बदकिस्मती होगी कि इंसान कहे कि मुझे तेरे कलाम के लिए ना मेरे पास 3 घंटे भी नहीं। जो भी ये जवाब देगा वो हमें नहीं दे रहा, वो अल्लाह को दे रहा है, क्योंकि उसका जवाब अल्लाह के पास रिकॉर्ड हो रहा है। ना मुझे को माजरत देने की जरूरत है, ना मैं आपके घर के हालात जानती, ना मैं आपकी मसरूफियात जानती, ना मैं आपकी लिमिटेशंस जानती, मुझे कुछ नहीं पता, ना आपको बताने की जरूरत है। आप अपना जवाब अपने अल्लाह के पास रिकॉर्ड कराएंगे कि मैं क्या जवाब देती हूँ, कि आज जब मेरे सामने अल्लाह ताला के दीन की तरफ दावत दी गई, अल्लाह के कलाम की तरफ दावत दी गई, इसको सीखने का कहा गया, हमारा तो काम ये था हम खुद भी सीखें और आगे लोगों को भी सिखाएं। हम तो खुद भी सीखने से कोरे रह गए, हमें यही नहीं आज तक समझ आई कि अल्लाह ताला ने कहा क्या है मुझे इस कुरान, इस खत में कहा क्या गया। तो जब मुझे दावत दी गई मैंने इसका क्या जवाब दिया, ये जवाब आपका, आपके और अल्लाह के दरमियान, आपकी रिकॉर्डिंग वहां वाला अलका मावीरा बात यह है। इंसान जितनी भी माजरतें दे वो खुद जानता है वो क्या कह रहा है। तो इसलिए हम तो आपको ये दावत देने के लिए आए हैं कि आप आइए। ये अभी चूंकि अल्हम्दुलिल्लाह नया कोर्स स्टार्ट हुआ है तो आपके लिए इंशाल्लाह ताला आसानी होगी, क्योंकि शुरू में अभी बहुत स्लोली लेकर चला जाता है। तो आपको बीच में जब लोग ज्वाइन करते हैं तो उनको ये होता है कि क्यों हम मतलब कैसे हम करेंगे, कैसे हम कवर करेंगे, या हमारे लिए मुश्किल होगी, या बहुत लोग आगे चले गए हम। लेकिन अब तो अल्हम्दुलिल्लाह शुरू से चूंकि स्टार्ट है तो कोई भी मुश्किल नहीं। अल्लाह से भागे नहीं, उसके कलाम से भागे नहीं, ये बहुत प्यारा कलाम है, इसकी तरफ को आए। तो ये आप इंशाल्लाह स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, हम आपको बहुत स्लोली लेकर चलेंगे, तो आप इंशाल्लाह ताला बहुत आसानी से इसको कवर करते चले जाएंगे। तो एज अ स्टूडेंट, हो सकता है आप में से बहुत से लोग सुनते हो क्लास को, पता भी होगा क्लास का, लेकिन एज अ स्टूडेंट इसलिए रजिस्टर कराएं ताकि आपकी इंशाल्लाह ताला फिर एक कमिटमेंट हो जाए कि एक अहद हो गया कि मैं अब ये इंशाल्लाह करूंगी। आपको ये होगा कि हाँ मैंने अब लग के टिक के करना है। आप देखें एक क्लास में आप जाते हैं, किसी अपनी साथी के साथ चली जाएं और कोई क्लासरूम में किसी में जाके बैठ जाएं और वहां पे लेक्चर सुन के आ जाएं, उसमें और किसी यूनिवर्सिटी में या कॉलेज में एनरोल होने में फर्क होता है या नहीं? आपकी सहेली आपको ले जाए, चलो आ जाओ मेरी क्लास में आज तुम भी बैठ जाना, उसमें या आपके एनरोल होने में फर्क होगा ना? जो बच्चा एनरोल होता है किसी जगह पे, किसी कॉलेज में, किसी यूनिवर्सिटी में, वो कितना सीरियस होता है ना अपनी पढ़ाई के लिए, और जो एक दिन ऐसे ही किसी के साथ चला गया वो सीरियस नहीं होता। तो ये आपको स्टूडेंट बनाना, कोई हमने आपसे फीस नहीं लेनी है, बिल्कुल फ्री है क्लास। स्टूडेंट बनाने का मकसद ये होता है कि आप सीरियसली लें फिर इसको, हम आपको फॉलो करें और हम आपकी अटेंडेंस लें और हमें पता हो कि आप आ रहे हैं या नहीं आ रहे। कभी भी अगर आप सुस्त पड़े या शैतान बसवास लेकर आए, शैतान क्योंकि बहुत एक्टिव हो जाता है जब इंसान कुरान की तरफ आने लगता है ना, शैतान हजार तरह के, हो सकता है इस वक्त भी किसी के जहन के अंदर हजार तरह की बातें आ रही हूँ कि मेरी तो ये मजबूरी है, मेरे तो ये मसले हैं, मैं तो कर नहीं सकती, तुम कैसे करोगी, तुम्हारा जहन कमजोर है, तुम्हारी इतनी हिम्मत नहीं है, तुमसे उठा नहीं जाता। तो शैतान बहुत बहुत वसवसे डालता है, बहुत वसवसे डालता है, क्योंकि वो नहीं कभी भी चाहेगा आप कुरान की तरफ आए। मैंने बताया ना ये रास्ता किसका, जन्नत का रास्ता है ये कुरान, तो वो कभी भी नहीं चाहेगा कि आप जन्नत के रास्ते पर जाएं। तो वो बहुत आपको माजरतें और एक्सक्यूजेस सुझाएगा, ये याद रखिए। ये वसवास आते हैं, ये नेचुरल है, वो उस बंदे के पीछे पड़ जाता है जो कुरान की तरफ आता है। तो वसवसे आएंगे लेकिन, और जरूरी नहीं आज ही, आज हो सकता है आप रजिस्टर करा लें, दो तीन चार हफ्ते बाद आपको बस वसवसे आने लगे, तो उस वक्त फिर क्या होता है कि जब आप स्टूडेंट होंगे तो हम फिर आपको कभी कॉल कर लेंगे, पूछ लेंगे, हम आपका साथ देंगे। वतवासव बिलहक वतवासव बिसब्र, यही तो है हक बात में एक दूसरे को तलकीन करने, ताकीद करना, एक दूसरे का हाथ थाम के चलना। हम आपका हाथ थाम लेंगे, हम आपको हिम्मत बताएंगे, अल्लाह के इज़्ज़त से, अल्लाह की तरफ से ये होगा, मगर हम इंशाल्लाह ताला आपके साथी बनेंगे। जब इंसान का कोई साथ देने वाला होता है ना, फिर उसको हौसला मिलता है, वो भी तो कर रही है, फिर मैं भी कर सकती हूँ। तो जब इंशाल्लाह ताला आपको हमारी तरफ से एक सपोर्ट मिलेगी और आप अल्लाह ताला से दुआ भी करते रहिए, इंशाल्लाह ताला आप जरूर कर पाएंगे। हमारी क्लास में हर एज के स्टूडेंट्स हैं, 9 साल के बच्चे से लेकर 80 साल की खातून तक हमारी क्लास में, अल्हम्दुलिल्लाह। तो पढ़ नानी पढ़ दादी से लेके और छोटे स्कूल जाने वाली लड़की तक भी है माशाल्लाह। तो इसलिए ना एज यहाँ पे कोई उजर है, ना पढ़ाई लिखाई कोई उजर है, ना कोई बैकग्राउंड किसी तरह की भी, हिंदी है, गुजराती है, इतना है। लोग ये भी पूछते हैं कि हम हिंदी में सिर्फ कर सकते हैं या इस लैंग्वेज में या इंग्लिश में सिर्फ कर सकते हैं, वो भी कोई उजर नहीं। इंग्लिश में भी हमारी क्लास में लोग करते हैं, जिन लोगों को उर्दू लिखनी नहीं आती, पढ़नी नहीं आती, वो भी कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हिंदी आती है कोई मसला नहीं। तो लेकिन कभी भी कोई भी चीज़ को उजर ना बनाइएगा, इंशाल्लाह आप एक कदम उठाएंगे ना अल्लाह ताला 10 कदम आपकी तरफ बढ़ेंगे, अल्लाह ताला थाम लेंगे। लेकिन आप इनकार ना करिए, आप लब्बैक जरूर करिए। अल्लाह ताला हम सबको साबित कदमी अता फरमाए। सुभानक अल्लाहुम्मा वबिहम्दिक नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुक व नतूबु इलैक।